दीन पर बजती तान अमर जय गान की,
तान अमर जय गान की।
काल पुरुष ने जय प्रकाश के स्वर में यह ललकारा है, काल पुरुष ने जय प्रकाश के स्वर में यह ललकारा है।
भावी इतिहास हमारा है, संपूर्ण क्रांति अपनारा है, संपूर्ण क्रांति अपनारा है, संपूर्ण क्रांति अपनारा है। भावी इतिहास हमारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भावी इतिहास हमारा है।
मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप लोग ऊब गए हो तो मुझसे बीच में ही कह सकते हैं, क्योंकि मैं जो आप लोगों से कहने वाला हूं वो ये कहना चाहता हूं कि ये सारा हम परिवर्तन किस लिए चाहते हैं, और ये करने वाले कौन होंगे। इससे पहले की जो चीजें हैं वो आपसे कह दी गई हैं, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं शिक्षण कहूंगा, शिक्षा नहीं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि मराठी और गुजराती भाषा में शिक्षा का अर्थ है सजा, और अब तक शिक्षा सजा ही रही है। कोई विद्यार्थी अब तक स्कूल में और कॉलेज में खुशी से नहीं गया, ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां ही उसने मनाना चाहा। इतनी अरुचि जिसमें है उसके लिए शिक्षा नाम सही है, लेकिन हमको विचार करना है शिक्षण का। उसमें सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो यह है कि समाज में शिक्षण जितना बढ़ता है शासन उतना कम होता है। आज उल्टा हो रहा है, शिक्षण संस्थाओं में भी शासन अधिक है, शिक्षण कम है। इसलिए समाज परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, बहुत थोड़े में एक एक चीज रखूंगा, ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज के शिक्षण में परिवर्तन कोई नहीं चाहता। विद्यार्थी नहीं चाहते, उनके पालक भी नहीं चाहते, और बाकी के सब उदासीन है। ये जब मैं कहता हूं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी गहराई में उतरिए, क्यों नहीं चाहते हैं। विद्यार्थी इसी समाज में स्थान चाहता है, आज की जो समाज रचना है इसी में स्थान चाहता है। वो इस समाज को बदलना नहीं चाहता है, बदलना इसलिए चाहता है कि इस समाज में उसको स्थान नहीं मिल रहा। जिनको इस समाज में प्रतिष्ठा और संपत्ति दोनों मिलती हैं, उनको कोई इस समाज को बदलने की आवश्यकता नहीं मालूम होती। विद्यार्थी को भी यही दो चीजें चाहिए, ये नहीं मिलती है उसकी शिकायत है। वो अपने को आईने में देखे जरा अपनी शक्ल, और मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं कि नहीं समझे। जितने आंदोलन विद्यार्थियों के हुए इनमें से एक भी आंदोलन शिक्षण के परिवर्तन के लिए नहीं हुआ, शिक्षण में सुविधाओं के लिए हुआ। मांगे ही मांगे हैं शिकायतें ही शिकायतें हैं। मूलभूत मांग नहीं है कि हम यह शिक्षण नहीं चाहते। अब तक कोई मांग ऐसी नहीं हुई है। ये दूसरी चीज है जो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। तीसरी चीज जो निवेदन करना चाहता हूं वो यह है कि शिक्षण प्रचार नहीं है। आज जो शिक्षण है यह प्रचार का साधन है। जिस विचार की सरकार होगी, जिस विचार का राज्य होगा, उस विचार के प्रचार का साधन शिक्षण है। चौथी चीज, शिक्षण इंडॉक्ट्रिनेशन का साधन नहीं होना चाहिए। खास विचार देना है विद्यार्थियों को, लड़कों को कुछ संस्कार देने हैं और कुछ उनको विचार देने हैं। यह एक शिक्षण का आज तक उद्देश्य रहा। फिर वो विचार किसी का भी हो, गांधी का हो, मार्क्स का हो, हिंदुत्व का हो, इस्लामियत का हो, यह अब तक रहा है। इसलिए इसमें से, शिक्षण में से कोई शक्ति नहीं पैदा हुई। समाज में सबसे बेचारा कोई वर्ग है तो शिक्षक का वर्ग है। जो और कुछ नहीं कर सकता वो शिक्षक बन जाता है। यह परिस्थिति क्या हम बदलना चाहते हैं? सारे तरुण तरुणियों से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न को अपने से अर्नेस्टली पूछिए। आप क्या चाहते हैं इसको तो पहले अपने दिल में साफ स्पष्ट कर लीजिए। इसी समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं या इस समाज की बुनियादों को बदलना चाहते हैं? गोविंद राव ने जिस इच्छा शक्ति का उल्लेख किया, वो इच्छा शक्ति पैदा इसलिए नहीं हो रही है कि इच्छा ही नहीं है, तो शक्ति कहां से आएगी? वो आकांक्षा ही नहीं। इसका भी एक कारण है, उसको भी आपको समझा दूं। अंग्रेजों के आने से पहले इस देश में ब्राह्मणों के सिवा कोई साक्षर नहीं था। मुसलमानों के आने के बाद कुछ कायस्थ और कुछ वैद्य बंगाल में और उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी साक्षर हुए। तो बाबू बनने की आकांक्षा इस देश के उन लोगों में अब तक है जिनको कभी शिक्षण मिला ही नहीं, जिनकी परंपरा में शिक्षण रहा ही नहीं, साक्षरता भी नहीं रही और शिक्षण भी नहीं रहा। वो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, बाबू बनना चाहते हैं। ईश्वर अगर प्रसन्न हो जाए तो पहला वरदान वो यही मांगेंगे कि हमारी ये मेहनत और मशक्कत की जिंदगी खत्म हो। ये गोविंद राव छोटा था तब ये लोग मुझे बुलाते थे, तो एक दफा मैंने इन लोगों से एक बात कही थी कि जितने ये प्रोफेशंस कहलाते हैं, सफेद पोश रोजगार, ये सब के सब समाज विरोधी रोजगार है। वकील लोगों के झगड़ों पर जीता है, डॉक्टर लोगों की बीमारियों पर जीता है, यानी अपने पड़ोसी का संकट मेरा अवसर है। इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जो आज के समाज में सारे क्षेत्रों में है। जेपी ने कहा बड़ी नम्रता से कि मैं शिक्षण शास्त्री नहीं हूं, और मैं कहता हूं कि आप शिक्षण शास्त्री नहीं हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। क्योंकि शास्त्री कौन है? शास्त्री वो है जो शास्त्र के बाहर जा ही नहीं सकता। पुस्तक के बाहर जिसकी बुद्धि कभी जा ही नहीं सकती, उसका नाम शास्त्री है। वो पुरोहित है। गांधी क्रांतिकारी हुआ क्योंकि शास्त्री नहीं था। मार्क्स क्रांतिकारी हुआ क्योंकि शास्त्री नहीं था। जेपी शास्त्री नहीं है, भगवान की कृपा है। ये काम शिक्षण शास्त्री नहीं कर सकेंगे। मैं जब मैट्रिक में था 1917 में, तो कलकत्ता की यूनिवर्सिटी ने एक कमीशन कायम किया था, सर माइकल सैडलर उसके अध्यक्ष थे। तब से ये विचार चल रहा है कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, और मुझे तो बहुत पसंद था क्योंकि मैं हर परीक्षा में पास होना बड़ी मुश्किल था मेरे लिए, वो बहुत पसंद थी वो चीज। तब से अब तक कितने ही कमीशन बैठे हैं, तो विनोबा कहते हैं कि जब कोई काम टालना हो तो कमिटी कायम करो। कमिटी वो खूंटी है जिस पर काम की पोटली टांगी जा सकती है और मुक्त हुआ जा सकता है। कमीशन को सौंप दो। अब तो ये छात्र युवा संघर्ष वाहिनी वाले भी कमीशन करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि वो बचना चाहते हैं जिम्मेवारी से। इस समाज के संस्कार जिन पर हैं, वो शिक्षण में क्रांति नहीं कर सकेंगे, चाहे मेरी पीढ़ी की हो पीढ़ी के हों, या चाहे मेरे बेटे के पीढ़ी के हों। आप उनके विचार सुन लीजिए, लेकिन अब यह चलने नहीं चाहिए। विचार आपका चाहिए, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता दो चीजों की है। मनुष्य की एकता की पहली आवश्यकता है, और दूसरी विश्व संवादित्व की है। ग्लोबल कंकॉर्ड, ह्यूमन यूनिटी। हमारे देश में अगर यह नहीं होगा तो अब शिक्षण में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। एजुकेशन से मनुष्य बदलेंगे, शिक्षण नहीं बदलेगा। अब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि किसी आंदोलन से, यानी जिसे अब तक हम आंदोलन मानते हैं, उससे गोविंद राव ने जिसकी व्याख्या की, वो आंदोलन नहीं। जिस आंदोलन में विधायक शक्ति नहीं है, ऐसे किसी आंदोलन से अब समाज परिवर्तन नहीं होने वाला। एक वाइस चांसलर जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। ये विद्यार्थी आंदोलन करेंगे किस लिए? कि जहां विश्वविद्यालय नहीं है वहां विश्वविद्यालय होना चाहिए। गोवा में विश्वविद्यालय हो कि ना हो, सबसे आगे विद्यार्थी आएंगे कि होना ही चाहिए। किस लिए होना चाहिए? कि फिर उसकी इमारतें हम तोड़ फोड़ सकें, उसकी परीक्षाएं हम न होने। इस लेवल पर इस स्तर पर जो एजिटेशन चलेगा उसमें से मनुष्य बदलेंगे, पद्धति नहीं बदल सकती। तो इसको गहराई के साथ आज सोचने की आवश्यकता है। शिक्षण की बुनियादों को ही बदलना होगा। जेपी ने कहा है कि विश्वविद्यालय में तो विद्या ही होनी चाहिए। आज के विश्वविद्यालय में विद्या भी नहीं है और विश्व तो है ही, दोनों नहीं, नाम सिर्फ यूनिवर्सिटी है। विश्वविद्यालयों में क्या हो कौन तय करे, विश्वविद्यालय में जाने वाला विद्यार्थी करे। एक बात यह कही गई है उनके संदेश में कि जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए विश्वविद्यालय के शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। मेरा निवेदन है कि व्यवसाय अंधा होता है, उस मानवीय मूल्य उसमें आते ही नहीं। केवल व्यावसायिक शिक्षण मनुष्य को पतित कर दे। हमारे देश में यह हुआ है, बढ़ई बहुत कुशल बढ़ई है, चमार बहुत कुशल चमार है, कुम्हार बहुत कुशल कुम्हार है, लेकिन इनमें से किसी में मानवीय मूल्य शून्य के बराबर है। फंक्शनलिज्म इज कलर ब्लाइंड टू ऑल सोशल वैल्यूज। केवल व्यावसायिक शिक्षण ऐसा शिक्षण है जिसमें से मनुष्य का विकास नहीं हो सकता। जीव का और जीवन का अनुबंध होना चाहिए। जीविका के लिए जो शिक्षण होगा उसमें से जीवन का विकास होना चाहिए। ये गवेषणा खोज वगैरह के शिक्षण अलग चीज है, बिल्कुल एकेडमिक है, लेकिन जो समग्र शिक्षण होगा उसमें जीविका और जीवन दोनों का अनुबंध होना चाहिए। यह अनुबंध अगर नहीं होगा तो शिक्षण किसी काम का नहीं है। और खेल और काम का भी अनुबंध होना चाहिए। काम से मतलब मेरा पढ़ाई, अंग्रेजी में कहावत है ऑल प्ले एंड नो वर्क मेक्स जैक ए डल बॉय। काम ही काम हो और खेल ना हो तो बुद्धू हो जाएगा शामू। दूसरे ने जवाब दिया ऑल प्ले एंड नो वर्क मेक्स हिम वर्स। खेल ही खेल हो और काम ना हो तो और भी बिगड़ जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब काम का रुख खेल की तरफ होना चाहिए। शिक्षण भी खेल बनना चाहिए। होमो ल्यूडेंस एक नया शब्द चल पड़ा है। होमो ल्यूडेंस, होमो ल्यूडेंस का मतलब है मनुष्य खिलाड़ी। हमारे यहां तो ईश्वर को भी खिलाड़ी माना है, लीला करता है, क्रीड़ा करता है, लेकिन खेल आज जो खेल है वो खेल नहीं रह गया है, वो भी रोजगार हो गया है, फंक्शन हो गया है, ग्लैमरस कॉमर्शियलिज्म। सब रोजगारी हो गए हैं, सब दुकानदारी, खेल में भी दुकानदारी है, खेल में भी स्पेशलाइजेशन है, खेल खेल नहीं रह गया है। मित्रों, हमारे जीवन में एक ही चीज ऐसी थी जिसमें से अध्यात्म का विकास हो सकता था, और वो चीज है खेल। क्योंकि खेल में मतलब कोई नहीं, बेमतलब के एक दूसरे के साथ मनुष्य इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ आनंद लेते थे। उसमें नियम थे, उन नियमों का पालन न हो तो खेल में मजा नहीं। एक दूसरे से कहते थे कि तुम रोते हो, खेलते नहीं हो। ये जो खेल है ये शिक्षण में भी दाखिल होना चाहिए, यानी शिक्षण का स्वरूप धीरे धीरे खेल की तरह होगा तब शिक्षण में रुचि पैदा होगी, जो आज नहीं है। आज शिक्षण ड्रेजरी है, बेगार है, मेहनत मशक्कत है। क्या मेहनत मशक्कत में मनुष्य को मजा नहीं आता? खेल में क्या मेहनत कम होती है? पसीना निकलता है, आदमी थकता है। जब तक थकता नहीं तब तक मजा नहीं आता। तो ये न कहिए कि मनुष्य थकना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। शिक्षण को आप जिस दिन रोजगार के साथ, धंधे के साथ, व्यवसाय के साथ जोड़ देंगे, उस दिन शिक्षण में भी कारखानेदारी आ जाएगी। बापू ने जब ये वर्धा शिक्षण, बुनियादी शिक्षण की योजना पेश की थी तो जाकिर साहब ने कहा था कि लड़कों का शोषण होगा, स्वेटिंग होगा, क्योंकि आप उसको उत्पादन के साथ नहीं जोड़ेंगे, कमाई के साथ जोड़ेंगे। कमाई के साथ अगर शिक्षण जोड़ा जाएगा तो शिक्षण का ह्रास होगा और दुकानदारी का विकास हो। ये मैं तरुण लोगों के विचार के लिए कह रहा हूं। शिक्षण एक आरोहण है, क्या वो अंग्रेजी में शब्द है, एनाबेसिस। एनाबेसिस ऊपर की ओर चढ़ना। ऊपर की ओर किस तरफ की ओर, तो मैंने आपको पहले बतला दिया, वैश्विक समाधित्व, ग्लोबल कॉन्कॉर्ड एंड ह्यूमन यूनिटी। जो रोजगार मनुष्य को मनुष्य से अलग करते हैं और रोजगार में जो चीज मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है उसका शिक्षण में से अंत होना चाहिए। नहीं तो क्रिएटिव फैकल्टी नहीं आएगी। क्रिएटिव अर्ज मनुष्य में कुछ न कुछ निर्माण करने की प्रेरणा है। बड़े बड़े घर की लड़कियां और लड़के चित्र क्यों बनाते हैं? बड़ी बड़े अमीरों की स्त्रियां कसीदा क्यों काटती हैं? स्वेटर क्यों बुनती हैं? मूर्तिकला का शौक किसी को क्यों होता है? सृजन का आनंद है, लेकिन सृजन को आप कमर्शियलाइज कर देंगे तो उसकी प्रेरणा बदल जाती है। उसमें फिर सांस्कृतिक प्रेरणा नहीं रहती, एक दूसरी प्रेरणा दाखिल होती है जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है। वो प्रेरणा, उस प्रेरणा की जगह अगर रचना की प्रेरणा, विधायक प्रेरणा, कंस्ट्रक्टिव जीनियस, क्रिएटिविटी की प्रेरणा अगर उसकी जगह आएगी तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, आज जो सेक्स का विकृत स्थान है वो नहीं रहेगा। जब इसके देखिए आज जितने संजीवन के रिक्रिएशन के साधन है वो सब कृत्रिम है, वो सब कॉमर्शियलाइज हो गए हैं। एक ही एस्केप है, एक ही आउटलेट है। इस क्रिएटिव एनर्जी अर्ज के लिए एक ही दरवाजा है और वो है सेक्स। इसलिए वही सिनेमे चलेंगे, उसी तरह के नाटक चलेंगे, उसी तरह की किताबें पढ़ी जाएंगी। इसका कारण यह है कि शिक्षण में क्रिएटिविटी के लिए कोई अर्ज नहीं, कोई स्थान नहीं। जीविका के साथ जोड़ने का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जीविका के साथ जोड़ने का मतलब कमाई के साथ जोड़ना नहीं है, उत्पादन के साथ। और उस उत्पादन को जितना आनंदमय हम बना सके उतना आनंदमय बनाएंगे तो शिक्षण में से संस्कृति आएगी, नहीं तो शिक्षण में से संस्कृति नहीं आएगी। हर एक चीज को, हर एक इस हर एक विषय को मैं बहुत बढ़ाऊंगा नहीं, थोड़े में आप लोगों के सामने एक दिशा रख रहा हूं कि शिक्षण क्या होना चाहिए, ए रफ स्केच ऑफ द प्रॉमिस्ड लैंड। क्रांति के बाद जहां आप पहुंचना चाहते हैं उसका एक कच्चा ढांचा, रूपरेखा एंड ए रिहर्सल ऑफ द रेवोल्यूशन इटसेल्फ, रेवोल्यूशन की टेक्निक का रिहर्सल, उसका अभ्यास। यह अगर शिक्षण में से नहीं होता है तो फिर क्रांति आएगी शासन से ही, शिक्षण से नहीं आएगी। क्रांति शिक्षण, शिक्षण क्रांति की प्रक्रिया भी है और क्रांति के बाद की स्थिति भी है। इस चीज को अगर हम हृदयंगम कर लेंगे तो मैं समझता हूं यह नहीं कहना पड़ेगा कि श्रम का घंटा चाहिए, काम का घंटा चाहिए, पढ़ाई का घंटा चाहिए। ये जो आज का शिक्षण है इसको मैंने कभी कोसा नहीं है, मैंने इसको बहुत बुरा शिक्षण नहीं माना है। 1920 में जब गांधी ने कहा कि इस शिक्षण से तो शिक्षण न होना अच्छा है तो मैंने विरोध किया, उनके विरुद्ध लेख लिखे कि यह शिक्षण है या हमारा सद्भाग्य है, नहीं तो अब तक तो शिक्षण ही नहीं था हमारे समाज में। इस शिक्षण में बुराई नहीं है, दोष है, कमियां हैं। उन कमियों की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं, उन कमियों का निराकरण करना होगा। संयम, ब्रह्मचर्य के पाठ पढ़ाने से काम वासना का अंत नहीं होने वाला, संयम से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगी हमारे तरुण और तरुणियों के चित्त में, उनको उनकी सृजन शक्ति को, क्रिएटिव अर्ज के लिए आउटलेट चाहिए और वो शिक्षण में आना चाहिए। और एक दो बातें इतने ही थोड़े में आप लोगों के सामने पेश करके मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि अब विचारों की भीड़ मेरे दिमाग में हो रही है। मैंने आपसे कहा कि यह प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स यूनियन कोई नहीं होना चाहिए, टीचर्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन। वो विनोबा मजाक करते हैं कई दफा कि इसके अगला कदम है कि बापों का यूनियन, लड़कों का यूनियन, और फिर पत्नियों का यूनियन और पतियों का यूनियन। ये यूनियन इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, संगठित स्वार्थ हैं, यह संगठित स्वार्थ भी एक नहीं है। तो सनोसरा के लोक भारती के आए थे परसों हमारे यहां मनु भाई पंचोली, उन्होंने कहा कि एक संकल्प कर लें सब मिलकर 20 साल के लिए एक योजना शिक्षण की बना लें और फिर यह संकल्प कर लें कि 20 साल तक इस योजना की बुनियादों को हम नहीं बदलेंगे। सारी पार्टियां मिलकर, अगर पार्टियां हैं तो सारी पार्टियां मिलकर। लेकिन मैं तो यह कहूंगा विद्यार्थियों से कि इसमें इन बुजुर्गों और बड़ों की सलाह लीजिए, लेकिन निर्णय आपका होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं यह आप तय कीजिए। कैसी दुनिया चाहते हैं, वो जो आपका प्रॉमिस लैंड है, जो आपकी कल्पना का राम राज्य होगा, वो किस तरह का होगा, उस दिशा में जाने की जो योजना होगी उसका नाम शिक्षण होगा। अब तक इस जिम्मेवारी से बचता रहा, ये लड़का बचता रहा, लड़की बचती रही, और बड़ा उसको यूफेमिस्टिक, बड़ा शोभनीय नाम दे दिया कि हमने तो बुजुर्गों की आज्ञा पालन करना सीखा। ईश्वरार्पण बुद्धि से मतलब क्या होता है कि हमको कुछ नहीं करना है, ईश्वर ही सब कुछ करे। इसी तरह से बुजुर्गों पर सारी बला टाल कर यह तरुण जिम्मेवारी से मुक्त होना चाहता है, उसको फेस करनी चाहिए जिम्मेवारी कि मेरा आंदोलन होगा, इस आंदोलन के बाद क्या होगा। परिस्थिति में आज ऐसी आकांक्षा है कि अब केवल आंदोलन से परिस्थिति और बिगड़ने वाली है। जहां देखिए वहां पर सभी जगह आंदोलन ही आंदोलन है। कारखानों में आंदोलन है, सरकारी नौकरों में आंदोलन है, म्यूनिसिपैलिटी और कॉरपोरेशंस में आंदोलन है, यूनिवर्सिटियों में आंदोलन है, सभी जगह आंदोलन है। ऐसी परिस्थिति में किसी दिन जो साधारण नागरिक है वो उकता जाएगा और कहेगा कि ये सारे आंदोलन 19 महीने तक बंद थे, वो परिस्थिति ज्यादा अच्छी थी। एक गोंजराम ने अपने भाषण में एक बात कही है, इसने भी अड़के में कही कि समग्रता का विचार होना चाहिए सारे समाज का। ये मजदूर अपना विचार करेंगे, विद्यार्थी अपना विचार करेंगे, सरकारी नौकर अपना अपना विचार करेंगे, सब अपना अपना विचार करेंगे, तो फिर सबका विचार कौन करेगा। इस समाज की बुनियादें बदलनी है, सारे समाज को इसका कोई विचार करेगा कि नहीं। समग्रता से हरेक अपनी अपनी तरफ खींचेगा, सबका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। एक एक का स्वार्थ सिद्ध होने से सबका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। मैं अपना स्वार्थ देखूं, ये लड़का अपना स्वार्थ देखे, ये लड़की अपना स्वार्थ देखे, इतने से तीनों का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। तीनों का स्वार्थ तब सिद्ध होगा जब हम में से हर एक तीनों के स्वार्थ का विचार करेगा। तो मित्रों, जो आंदोलन आपको करना हो उस आंदोलन में सारे समाज का विचार आना चाहिए। यह आज का हमारा जो आंदोलन है, हर एक का अलग अलग आंदोलन है। इन स्पेशल आंदोलनों से, विशिष्ट आंदोलनों से समाज कल्याण सिद्ध नहीं होगा। इस दृष्टि से मैं, शिक्षण का क्षेत्र है इसलिए शिक्षण के क्षेत्र के लिए यह बात कह रहा हूं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बाजार में पाप किया और दफ्तर में पाप किया तो तीर्थ में गंगा जी नहाने से वो धुल जाता है, लेकिन तीर्थ में जा अगर पाप किया तो कहीं नहीं धुलता। ये तीर्थ क्षेत्र है, शिक्षण का क्षेत्र, मनुष्य का पवित्र क्षेत्र है, मनुष्य के जीवन का पवित्र क्षेत्र है। यहां सारे संस्कार आने चाहिए, और कौन से संस्कार? ग्लोबल, वैश्विक संस्कार, अब विशिष्ट संस्कार नहीं, ब्राह्मण का संस्कार नहीं, मुसलमान का संस्कार नहीं, हिंदू का संस्कार नहीं, ईसाई का संस्कार नहीं, इन संस्कारों में से एक भी संस्कार नहीं आना चाहिए। हमारे देश में ये चीज विश्वविद्यालय में हो सकती है, शिक्षण में ये हो सकती है, अगर ये शिक्षण में नहीं होती है तो हमारे देश में मनुष्यता के लिए कोई आशा नहीं। ये कुछ बातें हैं जिन बातों की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता था कि कहां पहुंचना है। ये अगर हमारे दिमाग में साफ नहीं है तो जो आंदोलन होंगे उन आंदोलनों में से कुछ नहीं निकलेगा। आज आप देखिए, ये इस लड़के ने कहा, और मैं हर लड़के के मुंह से सुनता हूं कि यूनिवर्सिटी में बड़ा करप्शन है। लड़का क्यों नकल करता है फिर? नकल करप्शन नहीं है? वाइस चांसलर के चुनाव में करप्शन होता है, ये लड़के तो चुनाव में रोज करप्शन करते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो स्कूल में और कॉलेज में मुझे, क्योंकि मैं बहुत बोल सकता हूं, तो बहुत से इनाम मिल जाते थे, लेकिन इन इनामों में हमेशा मुझे एक लिफाफा ही मिला, पैसे कभी मिले नहीं। वो हमारा जो सेक्रेटरी होता था वो उन पैसों को क्या करता था कुछ अब तक मेरी समझ में नहीं आया। तो कॉलेज का विद्यार्थी जरा अपनी तरफ तो देखे, भीतर को मुड़कर देखे। आंदोलन और क्रांति वो विद्यार्थी करेगा जो खुद करप्ट नहीं हो, मुट्ठी भर भी हो, लेकिन ऐसे विद्यार्थी चाहिए। और मैं उनको विश्वास दे जाता हूं कि जो नॉन करप्ट विद्यार्थी होगा उसको कुछ दिन कष्ट सहने होंगे, लेकिन बाद में आंदोलन उसी का चले। दो करप्ट आदमी एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते जब तक नॉन करप्ट न हो। दो पापी मिलकर पाप करना चाहे तब भी एक दूसरे से ईमान रखना पड़ेगा। ये सामुदायिक पाप की भी मर्यादा है कि बगैर ईमान के सामुदायिक पाप भी नहीं हो सकता। इन विद्यार्थियों को और इन लड़कियों को, लड़कों को अगर ये बात जचती हो कि करप्शन को हटाना है तो हमको नॉन करप्ट होना चाहिए। अब देखिए, यहां कानपुर में 11 आदमियों को मजदूरों ने मार दिया। अब मुझे अगर अपनी जान प्रिय है तो मैं चाहूंगा कि इनका राज हो, क्योंकि आज तो वो पूंजीपति को मारते हैं, कल उसको मारेंगे जो इनकी बात नहीं मानता। गांधी को तो इसीलिए मारा ना कि वो बात नहीं मानता था, और श्रद्धानंद को तो इसलिए मारा है कि वो दूसरे धर्म का था। तो जो इस पर विश्वास रखते हैं, इस चीज में विश्वास रखते हैं कि भिन्न विचार का जो हो उसकी गर्दन काट डालो, उनका राज्य मैं चाहूंगा, मैं इन तरुणों से पूछता हूं कि तुम्हारी जितने आंदोलन होते हैं उनमें तुम्हारे खिलाफ कोई बोल सकता है? तुम्हारी भीड़ से सारा समाज आतंकित हो जाता है। इमरजेंसी को मैंने आतंक पर कहा था, सारे आंदोलन तो आतंक पर ही होते हैं। इन आंदोलनों की मर्यादाओं को भी समझो। तुम पर हमारा विश्वास हो, हमारा से मतलब समाज का, मेरा विश्वास हो या ना हो इसका आज की आज बहुत कीमत नहीं रह गई, लेकिन समाज में तुम्हारा विश्वास हो, प्रतिष्ठा हो कि यह गलती कर सकता है लेकिन यह भ्रष्टाचार नहीं करेगा, यह बेवकूफ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं। तरुणों के लिए, मुट्ठी भर तरुणों के लिए ही क्यों ना, इस तरह की भावना समाज में पैदा होनी चाहिए। इसे मैं कैरेक्टर कहता हूं। यह सामाजिक चारित्र है, जिस सामाजिक चारित्र से ही आपका आंदोलन सफल हो सकता है। तो यह अंतिम बात थी जो मुझे कहनी थी। पहली बात, शिक्षण का उद्देश्य यह है कि शासन क्षीण होता जाए, इसलिए जो शिक्षण में क्रांति चाहते हैं उनमें अनुशासन होना चाहिए, कोई उनमें हुक्मशाही नहीं। ये पहली चीज। दूसरी चीज, शिक्षण प्रचार नहीं है, किसी विचार का प्रचार नहीं, किसी पार्टी का प्रचार नहीं, किसी वाद का प्रचार नहीं, किसी धर्म का भी प्रचार नहीं। शिक्षण प्रचार नहीं होगा,